हरे कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 4। आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले पूरी श्रद्धा और भाव के साथ मंगल आचरण करेंगे ताकि हम जो पढ़ने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं पितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानु सुतदेवि प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता माते की जय हो। अब तक भगवान श्री कृष्ण ने 2 श्लोकों में अर्जुन को ये बताया है कि तुमने जो अब तक अपना ज्ञान बताया है, जो कुछ मुझे अब तक कहा है, वो मेरे सामने तो बिल्कुल गंदगी के समान है, क्योंकि ये तो तुम्हें ना इस संसार में कीर्ति प्रदान करेगा और ना ही स्वर्ग लोक प्रदान कराएगा। और फिर भगवान ने तीसरे श्लोक में बोला तुम्हारे अंदर ये गंदगी आई किधर से है, मतलब ये तो तुम्हारे ऊपर सूट ही नहीं कर रही है, क्योंकि ये बहुत हृदय की दुर्बलता है, तुम्हें इसको त्याग देना चाहिए और अपना उठकर अपना युद्ध करना चाहिए। अब जब अर्जुन ने भगवान के मुख से ये शब्द सुने तो अर्जुन को इतनी हैरानी हो रही थी कि कृष्ण मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हैं, मैं तो कृष्ण को ये बता रहा हूँ कि मैं अपने बड़ों के साथ युद्ध नहीं करना चाह रहा हूँ और कृष्ण इसको गंदगी बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं ये हृदय दुर्बलता है। तो यही बात को माइंड में रखते हुए अर्जुन आज बोल रहे हैं कृष्ण के साथ, मतलब कृष्ण ने जो बोला है उसका तोड़ बता रहे, आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं अर्जुन कृष्ण के सामने। तो अर्जुन कह रहे हैं चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 4। अर्जुन उवाच कथम भीष्मं अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्ह वरिसूदन। कथम भीष्मम अहम, कथम मतलब अर्जुन ने कहा, कथम मतलब किस प्रकार, कैसे, भीष्मम पितामह भीष्म को अहम मैं संख्ये संख्ये कहते हैं युद्ध में, आप बताओ मैं पितामह भीष्म को युद्ध में और आगे द्रोणम च द्रोणाचार्य जो मेरे गुरु महाराज है उनको च मतलब भी मधुसूदन हे मधुराक्षस के संहार करता मैं युद्ध में भीष्म पितामह को और मेरे गुरु महाराज को इशु भी ही पता है किसको बोलते हैं, जैसे आप मुझे इशु बोलते हो ना, इशु भी का मतलब होता है तीरों से, इसे पता है इशु भी ही प्रतियोत्स्यामी, प्रतियोत्स्यामी मतलब उलट कर प्रहार करूं, मैं कैसे तीरों से उनके ऊपर उलट कर प्रहार करूं, पूजा रहा मतलब वो पूजनीय है, उनकी तो पूजा करनी चाहिए, आप बोल रहे हो कि मैं उनके साथ तीर उनको चलाऊ उनके साथ लड़ाई करूं। अरिसूदन हे शत्रुओं के संहार करता, यानी कि शत्रुओं को मारने वाले, यानी इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान को दो नामों से संबोधित किया है, एक तो मधुसूदन कहा है और दूसरा अरिसूदन कहा है। श्री प्रभुपाद जी हमें बताएंगे कि इस श्लोक का तात्पर्य क्या है, पहले अनुवाद करते हैं। अर्जुन ने कहा हे शत्रुहंता हे मधुसूदन मैं युद्ध में किस प्रकार भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊं, यानी कि आप बोल रहे हो ना कि मैं गलत कर रहा हूँ, हृदय की दुर्बलता है, ये गंदगी है मेरे हृदय में क्यों आई कैसे आई, तो फिर मैं अपने इन गुरुजनों के ऊपर बाण चलाऊं ये क्या अच्छा ही है, वो अगर खराब मेरी बात खराब लग रही है आपको तो आप जो बोल रहे हो वो अच्छी बात है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सामान्य व्यक्ति सदैव पूजनीय रहते हैं, यानी कि उनका सम्मान करना चाहिए, सम्मानीय व्यक्ति हैं, और कौन कौन जैसे पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जो उनके गुरु महाराज हैं उनके दादा, अगर वो नहीं भी उनके रिलेटिव नहीं होते तो भी वो है ना इतने पूजनीय रिस्पेक्टेबल पर्सन है तो उनकी हमेशा पूजा करनी चाहिए, यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बोलते अर्जुन बिल्कुल ठीक बोल रहा है, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी हमें उनके ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए, अगर वो करते हैं जैसे पेरेंट्स होते हैं हमारे समझे वो बड़े हैं ना, अब पेरेंट्स हैं हमें अगर कोई थप्पड़ मारता है हमारी गलती की वजह से तो हमें उनको जवाब में तो कभी भी वापस नहीं मारना चाहिए ना, तो यहाँ पर भी बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों को उलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये तो मतलब हम आम लोग जो होते हैं ना इतना तो मैनर्स उनके अंदर भी होना चाहिए, जैसे गुरुजनों के साथ वाग युद्ध भी मतलब एब्यूज वर्ड्स उनके साथ यूज करना या फिर बदतमीजी करना वो भी नहीं करना चाहिए, ये भी सामान्य शिष्टाचार है। के साधारण जो लोग होते हैं उनको भी पता है, स्कूल में देखो कितने सारे टीचर्स के सामने बच्चे होते हैं, टीचर के साथ कभी बदतमीजी से भी बात नहीं करते, बल्कि अगर कभी ऐसा होता है कि टीचर अगर हमारी मिस्टेक नहीं होती है डांटती है तो भी हम लोग चुप करके सुन लेते हैं कि हाँ भाई टीचर ने बोला है ऐसे करके, उनके साथ बदतमीजी फिर भी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी कि अगर वो हमसे इस तरह का व्यवहार करें कि हम लोगों को इन्हें डांट रहे हैं गुस्सा कर रहे हैं तो भी हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता है। श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं फिर अर्जुन क्या इतने भी अर्जुन के पास मैनर्स नहीं होंगे, अर्जुन क्या इतना भी सीख के नहीं आया होगा कि अपने गुरुजनों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, अगर इतना सीखा है तो फिर उसके ऊपर बाण कैसे छोड़ सकता है। क्या कृष्ण कभी अपने पितामह या नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं। अब अर्जुन तो जब कृष्ण ने अर्जुन को बोला ना कि तुम्हें ये तुम्हारे हृदय में दुर्बलता है, हृदय दुर्बलता है, ये गंदगी है, ये नामर्दी है तुम कर रहे हो, तो अर्जुन को ऐसा लगा कि तुम कृष्ण आप मुझे ऐसे बोल रहे हो, मैं अपने गुरुजनों के साथ लड़ाई नहीं करना चाह रहा हूँ तो आप मुझे ऐसे कैसे बोल रहे हो, वैसे भी नहीं करनी चाहिए, तो ये तो सामान्य शिष्टाचार है। श्री प्रभुपाद भी उस चीज को एग्री कर रहे हैं कि अगर कृष्ण के सामने भी उनके गुरु महाराज हो या नाना उग्रसेन हो तो फिर कभी कृष्ण उनके साथ भी लड़ाई नहीं करता, तो अर्जुन को क्यों बोल रहा है कि आप लड़ाई करो। आगे अर्जुन अभी तक संतुष्ट नहीं है, मतलब कृष्ण ने उसको इतना भड़का दिया है कि अब वो भड़क उठा है कि मैं कृष्ण को बताऊं तो सही कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है, कि है ना मैं क्यों नहीं लड़ाई करना चाह रहा हूँ। पहले तो बोला मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के ऊपर कैसे लड़ाई कर सकता हूँ, उनके ऊपर बाण कैसे चला सकता हूँ। और श्लोक नंबर 5 में कहते हैं, गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भुक्तुं भोक्तुं भैक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामस्तु गुरुनि हैव भुञ्जीय भोगान रुधिर प्रदिक्तान। गुरु न हत्वा यानी कि गुरुजन जो है उन गुरु मतलब गुरुजनों को, और हत्वा मतलब उनकी हत्या करके उनको मारकर, महा ही मतलब निश्चय ही महानुभावान महापुरुषों को श्रेय यानी कि ऐसे गुरु महाराज है ना, जैसे हमारे गुरु महाराज हैं और हमारे दादाजी जैसे भीष्म पितामह हैं, इनको मार कर श्रेयो भोक्तुम, श्रेयो मतलब अच्छा ये है, भोक्तुम मतलब भोगना, क्या भोगना अच्छा है, भैक्ष्यम, भैक्ष्यम मतलब भीख मांगना ज्यादा अच्छा है। यानी कि आप बोल रहे इनको लड़ाई में हारो, हरा दो और फिर है ना आप क्या करो, राज आपको मिलेगा। लेकिन मैं समझ रहा हूँ इनको हराने से बेहतर है, राज हासिल करने से बेहतर है कि मैं भिखारी बन जाऊं, और ज्यादा अच्छा है। और श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम अपीह, भैक्ष्यम अपीह मतलब भीख मांगकर, अपीह इस जीवन में लोक के इस संसार में, हत्वार्थ कामान, हत्वार्थ मतलब मार कर, अर्थ कामान, हत्वा मतलब हत्या करके और अर्थ मतलब ये दुनियावी दौलत हासिल करने के लिए काम इच्छा रख के मैं उनको मारूं तुन, लेकिन गुरुन यानी गुरुजनों को हत्वार्थ काम, गुरु निहैव, निहैव का मतलब होता है इस संसार में, और एव मतलब निश्चय ही, भुंजीय भोगान, भुंजीय मतलब जो भी कुछ हम खाते हैं भोगते हैं, भोगने के लिए जो भी बाध होते हैं वो भोग्य वस्तु जो होती है, रुधिर, रुधिर का मतलब होता है रक्त, जैसे जो ब्लड होता है ना उसको, और प्रदिग्धान मतलब सनी हुई है या रंजित है। यानी कि गुरु न हत्वा ही महानुभावान, गुरु को हत्या करके, ऐसे पुरुषों की हत्या करके श्रेयो भोक्तुम, उससे ज्यादा श्रेय क्या है, भैक्षम अपी है लोके के, मैं भिक्षा मांगकर इस संसार में गुजार करूं, हत्वार्थ कामांस्तु, हत्वार्थ मतलब हत्या करूं उनकी अर्थ की इच्छा से, अर्थ कहते हैं धन दौलत, ठीक है, बोला धन दौलत की इच्छा से मैं उनकी हत्या करूं, गुरु नहीं है वह, गुरुओं की हत्या करूं, भुंजीय भोगान, इस तरह से जो भी मैं भोग मुझे प्राप्त होंगे अगर मैं ऐसा कर लूंगा तो जो कुछ भी मुझे प्राप्त होगा तो मैं ये बोलूंगा ना कि उनके रक्त से सना हुआ है, ये बोलते उनके खून से लिपटी हुई चीज में ग्रहण कर रहा हूं, तो ऐसा ही लगेगा ना मुझे। और यानी कि अर्जुन कह रहे हैं ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की उपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही, यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी हुई होती है। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। अब देखो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी हमें एक बात बता रहे हैं कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आपने पहले किसी गुरु महाराज को एक्सेप्ट किया है, ठीक है कि मैं उसका शिष्य बनता हूँ, लेकिन शास्त्र में लिखा हुआ है, देखो शास्त्र की बात श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो, निंद्य कर्म मतलब ऐसा कार्य जो उसे नहीं करना चाहिए, उसमें अगर उसने किसी की सहायता की है, अगर वो गलत कार्य करता है, क्योंकि गुरु को हर वक्त ना सचेत रहना होता है, गुरु को परमिशन ही नहीं है गलत कार्य करने की, जो गुरु बनता है ना जो उसको वो गलत कार्य कर ही नहीं सकता, अगर कर लेता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो विवेक शून्य यानी कि अपनी अक्ल से सही डिसीजन नहीं ले सकता है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वो गलत कार्य कर लेता है तो त्याज्य है, फौरन से त्याग दो। जैसे संसार में भी देखो, अगर आप है ना कोई ऐसी स्कूल में एडमिशन ले लेते हो जो कि बाद में आपको पता चलता है कि ये स्कूल के जो टीचर हैं वो सही सिलेबस आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, वो सही नहीं कर रहे हैं, या फिर उनका उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है स्टूडेंट्स के साथ, तो आप क्या करोगे, अब ये सोच के अब क्या करें, अब बस एडमिशन ले लिया तो इसी स्कूल में पढ़ना, उसी टाइम पर आप उस स्कूल को छोड़ दोगे ना, तो जब आप भौतिक उस स्कूल में पढ़ने से पता है क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपकी जिंदगी के एक साल दो साल जो है ना स्टडी के हैं वो जाया होंगे। लेकिन गुरु अगर गलत मिल जाता है आपको, अगर आप किसी गलत गुरु के चंगुल में फंस जाते हो, फिर तो आपका पूरा जन्म आपका सत्यानाश हो जाएगा, बिगड़ जाएगा पूरा जन्म। इसलिए जैसे अगर आपको खबर पड़ती है कि आपने जो गुरु एक्सेप्ट किया है वो गुरु सही नहीं है, तो फौरन उसका त्याग करो। और एक बात तो मैं फिर भी आपको वापस से याद करा दूं कि गुरु कभी भी अपनी मर्जी से एक्सेप्ट मत करो कि मैं इसको गुरु बनाना चाहता हूँ, ये देखने में ऐसा सही सही बता रहा है और इसका बिहेवियर भी अच्छा है। कभी भी नहीं, गुरु के लिए इतना सतर्क रहना है क्योंकि ये पूरा जन्म उस गुरु के आदेश अनुसार, जो गुरु शिष्यों को अपने आगे पीछे फिरने के लिए बोलता है ना, वो कभी भी है ना सच्चा गुरु नहीं हो सकता है। शिष्य का अगर गुरु का कर्तव्य क्या है, हम अगर गुरु के सारे ना क्वालिटीज को बताते हैं ना कि भाई गुरु के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, तो शिष्य की क्वालिटी होती है कि गुरु के आदेशों का पालन करे। शिष्य के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये क्वालिटी होनी चाहिए कि गुरु की, अब देखो गुरु की सेवा करने के लिए बोला तद्विधि प्रणिपात है ना, परिप्रश्न है ना, सेवाया, सेवा का क्या मतलब है वो भी गुरु उसको बताएगा। सेवा का मतलब ये नहीं होता है कि वो सारा दिन शिष्य को अपने आगे पीछे घुमाता रहे, सेवा का मतलब होता है जो शब्द शास्त्र के अनुसार गुरु महाराज हमें बता रहे हैं उनको फॉलो करना, ये होता है गुरु की सेवा करना। यहाँ संसार में भी देखो जो गुरु होते हैं, अगर अच्छा एक अगर आपके साथ सिंसियर गुरु होगा और आप उसको वो आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, और आप बोलोगे नहीं मैं आप मुझे पढ़ाते हो इतना अच्छा, इसके बदले में मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो और है ना मैं आपकी टांगे दबाता हूँ, हाथ आपके है ना सर में मालिश करता हूँ, या आपके कपड़े धोता हूँ, या आपका ये काम करता हूँ, तो बोलेगा कि अगर आप मेरी सेवा करना ही चाहते हो तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो याद करो ना, ताकि आप एग्जाम्स में पास हो जाओ। मेरी सेवा करने की जरूरत नहीं है, मेरी सबसे बड़ी सेवा यही है कि आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको याद करो। गुरु तभी खुश होगा अगर वो सिंसियर होगा, वो अपनी सेवा से खुश नहीं होगा। जब आध्यात्मिक, जब भौतिक गुरु की भी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी को फॉलो करो, तो फिर है ना आध्यात्मिक गुरु ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बोल दे कि नहीं मेरे आगे पीछे आप घूमो फिरो। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि साफ है कि गुरु को त्याग देना चाहिए अगर वो आपको अगर वो कोई निंदनीय कार्य करता है या वो विवेक शून्य हो गया है। और मैं आपको क्या बताई थी कि गुरु अपनी मर्जी से नहीं, बस कृष्ण के सामने वास्तव में पता है ये असली हमारे जो हृदय का हमारा जो असली गुरु है ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु, इस संसार का रियल गुरु कृष्ण है और वही सबको जानता है कि किस कौन किस कितनी हद तक है और कौन सा गुरु उसको मैं प्रोवाइड करूं। आप बस पूरे सच्चे हृदय से कृष्ण के पास सरेंडर हो जाओ और कृष्ण को बोलो देखो आध्यात्मिक में ज्ञान लेना चाहता हूँ, मैं नहीं हासिल कर सकता हूँ किसी गुरु की है ना सहायता के बगैर, मेरे बस की बात नहीं है कि मुझे समझ में आए, आप मुझे कोई एक ऐसा शुद्ध गुरु प्रोवाइड करो, ऐसा एक गुरु हो जो वर्तमान आचार्य हो, जो मुझे सिखाए, जो मुझे हर चीज बताए, मुझे वर्तमान आचार्य की नीड है, मुझे इस पर्सन इस व्यक्ति की नीड है। कभी भी भगवान को मत कहना कि भाई ये जैसे आप बोलते हो ना कि दीदी आप हमें बताते हो, या मैं किसी भी पर्सन को आप नहीं जान सकते हो कि वो कितनी हद तक आपके साथ सिंसियर है। आपके साथ कृष्ण के अतिरिक्त तो और कोई सिंसियर कोई नहीं सकता है। आप कृष्ण के सामने कृष्ण से जो भी मांगते, भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कह दिया 7.21 में, यो याम याम तनुम भक्ते श्रद्धया चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको जो जो चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, खाली आप मुझे बताओ कि तुम्हारी श्रद्धा किस पर है, तुम्हारी जितनी जितनी श्रद्धा तीव्र होगी मैं वैसा वैसा आपको प्रोवाइड करूंगा। आपकी अंदर सिर्फ एक ही क्वालिटी होनी चाहिए कि आप कृष्ण के सामने पूरा सच्चे हृदय से ये बोलते हो कि कृष्ण मुझे आप, मैं आपके सरेंडर हूँ, आप जो मेरे लिए एक्सेप्ट करते हो वो मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, आप मुझे ये दो, ये बेवकूफ बोलते हैं। क्यों? या फिर वो बोलते हैं जो समझते हैं कि कृष्णा बेवकूफ है, वो अच्छा हमारे लिए डिसीजन नहीं लेगा, इसलिए डिसीजन मैं खुद ही ले लेता हूँ, कृष्णा खाली उसको अप्रूव कर दे। ऐसा नहीं है, कृष्ण को डिसीजन लेने दो, वही डिसीजन जो है वो आपके लिए बेहतर होगा। इसीलिए भक्तिपाद कहते हैं, आई नो ए कृष्ण, आई नो दैट योर प्लान्स आर मोर बेटर प्लान्स देन माय ड्रीम्स। मैंने जो ख्वाब देखे हैं कि ये मेरे साथ होना चाहिए, ये मेरे साथ होना चाहिए, ये तो बेवकूफ ही है, क्योंकि मेरे पास तो अक्कल ही नहीं है। लेकिन आप अगर मेरे लिए कोई प्लान्स करते हो तो वही सबसे बेटर है। तो यहाँ पर साफ साफ श्रीपा जी बोलते हैं, ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए जो विवेकशून हो या निंदनीय हो। कौन कहता है? शास्त्र कहते हैं। आगे बोला, दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, यद्यपि केवल आर्थिक लाभ के लिए ऐसा करना उनके लिए उचित नहीं था। अब देखो, दुर्योधन क्या था? अधर्मी था। तो अधर्मी का साथ देना अधर्म है, और वो सिर्फ साथ क्यों दे रहे थे? आर्थिक सहायता के जो द्रोणाचार्य क्यों साथ दे रहे थे? चलो, अगर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी तो भी द्रोणाचार्य साथ इसलिए दिए थे क्योंकि शुरू से वो उनका उनकी कुलगुरु हैं, इसलिए उनको देना पड़ा। लेकिन यहाँ पर श्रीपादी बोलते हैं, यद्यपि केवल आर्थिक लाभ के लिए ऐसा करना नहीं चाहिए था, उनको ऐसा करना उचित नहीं था, और भीष्म पितामह भी त्याग सकते थे कि भाई मैं अधर्म का साथ नहीं दे सकता, भले मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए, लेकिन मैं अधर्म का साथ कैसे, मेरी प्रतिज्ञा बनी रहे उसके लिए मैं हर कुछ करने के, मेरी बहू को मेरे सामने अगर नग्न करने का भी कोई प्रयत्न करता है तो उसका भी मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। क्या ऐसा सूट करता था उनके ऊपर? ऐसा सूट नहीं करता था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यही बात है भगवान श्री कृष्ण अभी बताएंगे। अभी तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे गुरु अगर कोई ऐसा कार्य करते हैं तो उन्हें फौरन त्याग देना चाहिए। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, यानी कि अब वो इस लायक ही नहीं रहते कि उनको वो आचार्य का सम्मान, जो अभी उससे पहले अर्जुन ने बोला ना कि मैं कैसे कथम भी, मैं उनके ऊपर कैसे तीर चलाऊं, तो बोला अब तो वो इस लायक ही नहीं है कि उनका इतना सम्मान किया जाए क्योंकि वो अधर्म का साथ दे रहे हैं। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभ का भोग करने का अर्थ है रक्त से सने हुए विषयों का भोग करना। वो सोच रहा है अर्जुन, अब भी बोल रहा है ना, भुंजी या भोगान रुधिर प्रदिग्धान, कि अगर वो लोग ने गलती की है ना, वो लोग अगर गलती कर भी रहे हैं फिर भी हैं तो मेरे गुरु ना, और अगर मैं कोई उनको अपने गुरु महाराज को मार के अगर कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त करता हूँ या जो भी खाता हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि उनके खून से रंगा हुआ भोजन मैं खा रहा हूँ। अभी अर्जुन और भी बहुत कुछ बताएंगे, साथ रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।